أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے ہمارے شامل حال. رومیوں کی طرف جانے کی تیاری، چلیے آج کنٹینیو کرتے ہیں آگے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے کسی امتحان میں اگر ڈالے تو اس میں پورا اتارے. شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رحیکم مختوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایکسٹریکٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کس طرح ایمان اور نفاق کے بیچ میں ایک ایسی حد فاصل بنتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے لیے ہمیشہ دی بیسٹ، یعنی سب سے بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ قدم بڑھا کر چلنے والے صحابہ کرام تھے. کیسے وہ بہت زیادہ محبت کے دعوے کیے بغیر عمل کی شہادتیں قائم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو بھی ایسا کرے اور جب عمل کا وقت آئے تو ہم اس میں سب سے آگے ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر تبوک میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جو بظاہر اگر عقل سے پوچھا جائے یا ایفس اینڈ برڈس میں پڑھا جائے یا آپ کہہ لیجئے کہ ایسی سوچ رکھی جائے کہ جس کو ایک عام انسان کی سوچ کہتے ہیں الحمدللہ، تو وہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں تھی. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی اور اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین تھا اور آپ کی لیڈرشپ میں وہ اتنے مطمئن تھے کہ وہ یہ سوچ لیا کرتے تھے ایسے وقتوں میں کہ ہم اس حکمت کو پا ہی نہیں رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہی تھی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہوا. ہم پیج 584 سے شروع کریں گے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال دیا، اور اب دیکھیں گے کہ آگے صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں. اور یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صدقہ دینے والے کس خوبصورت طریقے سے جو ہاتھ میں تھا لے آئے، نہ شرمائے کہ تھوڑا ہے اور نہ اکڑے کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، نہ دکھا دکھا کر دیا اور نہ چھپا چھپا کر دیا. اسلامک لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اور بعض کہتے کہ سبا بن ارفتا کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے دیا. لیکن مدینہ میں ہی رہنے دیا لیکن منافقین نے ان پر تانہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لاحق ہوئے. لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے ہارون علیہ السلام کو تھی؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یہاں بھی عمل کی بات نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ جوش خروش سے بھاگ دوڑ سے نکلے، کدھر جا رہے تھے؟ دین کے تقاضوں کو نبھانے. تو انصار اللہ میں جب تک جوش و خروش نہیں ہوگا اور بھاگ دوڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے یہ فتوحات نہیں ہوں گی. آج کی تو بہت بڑی تبوک ہے، کل کی تو بہت چھوٹی سی تھی. جب مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ کسی چیز سے کو بھی راستے میں نہیں لاتا. اور اگر روئے دھوئے ڈھیلے ڈھالے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں لیٹ می تھنک آئی ول لیٹ یو نو، نہیں، ایک جملہ لکھ لیجئے، صحابہ کرام دین کے مطابق خود کو چلاتے تھے، ہم اپنے مطابق دین کو چلاتے ہیں. وہ دین کے راستے کی ضرورتوں اور اس وقت کی نیڈ آف دی آور کو دیکھ کے نکل پڑتے تھے. ہم پہلے اپنے اسکیڈول سیٹ کرتے، نہیں اٹ ڈزنٹ سوٹس می، آج نہیں کل، کل نہیں. صحابہ نے یہ ڈیلی ڈیلی سیکھی ہی نہیں تھی. اور ایسا ہی گروہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا. اور پھر اسی طرح یا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے پیچھے کسی کو نامینیٹ کرنا چاہیے. फिर हज़रत अली को पीछे छोड़ा क्योंकि ख़ानदान था जो पीछे, तो चले इससे टेक केयरर भी पीछे थे। लेकिन जब मुनाफिकों ने ताने दी, इसको नोट कीजिए, एक ही चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी किसी और तरह देख रहे हैं, लेकिन निफाक वाले दिलों ने इसको किसी और तरह सुना, और हज़रत अली उन बातों को सुनकर निकल पड़े। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी इंसान बातें नहीं सुनना चाहता, और वो बुज़दिल भी नहीं थे, बहादुर थे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी की ये बात फिर मान ली कि आप जाइए। आज आप सोचिए, अगर आपकी ड्यूटी बदल दी जाए, आपको एन वक्त पे एक नोटिस दिया जाए इधर नहीं उधर, तो हम कितना बुरा माने। इल्ला माशाल्लाह, इतना तज़किया और इतनी तरबियत हो जाए कि लब्बैक, यस, समेना व ताना। ऐसा ही ग्रो फिर आगे बढ़ता है और वही लोग जीतते हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ मिलाकर देख लें, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती जो हमें पता होती हैं। और बच्चा आगे से अगर बहस करे, शक करे, आप पे इल्ज़ाम लगाए, तो आप कहेंगे बेटा बड़े हो गए तो समझ जाओगे। और आज बड़े होकर हम सबको समझ आ चुका है कि हमारे साथ हमारे माँ बाप ने अगर कोई सख्ती की या कोई हमारी बात नहीं मानी, तो उसमें कितनी बड़ी खैर थी। और अल्लाह ताला हमें आज भी ऐसा ही बेहतरीन मुतबे बना दे। और फिर हज़रत अली चले गए। ऐसे लगता है कि सहाबा की कोई मर्जी ही नहीं थी, कोई उनके अंदर रिजेंटमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं, सब कुछ था, इंसान थे, लेकिन नबी की तरबियत और दीन के काम करने का शौक और एक लीडर की लीडरशिप में अपने आप को मुतमईन करने का शौक, ये चीज़ें ही उस गिरोह को नसीब होती हैं जिनको अल्लाह ऐसी बड़ी फतूहात देता है। खैर, बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतज़ाम के बाद शिमाल की जानिब कूच फरमाया। निसाई की रिवायत के मुताबिक ये जुमे का दिन था, मंजिल तबूक थी, लेकिन लश्कर बड़ा था, 30,000 मर्दाने जंगी थे। इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर कभी फराहम ना हुआ था। नोट कीजिएगा, जब मुश्किल हालात है तो इतने लोग जमा हो गए, इसलिए मुसलमान हर चंद माल खर्च करने के बावजूद लश्कर को पूरी तरह तैयार न कर सके थे, बल्कि सवारी और तोशे की सख्त कमी थी। चुनाचे 18-18 आदमियों पर एक एक ऊँट था, जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। इस तरह खाने के लिए बसा औकात दरख्तों की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जिससे होंठों में वरम आ गया था। मजबूरन होंठों को किल्लत के बावजूद ज़िबा करना पड़ा, ताकि इसके मैदे और आंतों के अंदर जमा शुदा पानी और तरी पी जा सके। इसलिए इसका नाम जैश उसरत यानी तंगी का लश्कर पड़ गया। कुछ कहना और सुनना चाहते हैं इस पे? हम तो दीन के काम भी करते हुए तभी खुश रहते हैं जहाँ साथ साथ स्नैकिंग होती रहे, जहाँ बड़ी पुरतकल्लुफ दावत हो, जहाँ वन डिश हो, तुम ये बनाना मैं ये बनाऊंगी, खुशी खुशी हम लेकर आते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसे लश्कर भी होते हैं कि जहाँ दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। पूछिए खुद से, क्या मैं उस जगह होती तो इस जैसे उसरत में खुशी से जाती? दरख्तों के पत्ते, तोशे की कमी, सवारी की कमी, और इतने बड़े लश्कर को, 30,000 लोगों को अगर वाकई एक खजूर दी जाए, तो 30,000 खजूरें तो एक दिन में एक वक्त चली गई। आज मैं आप उस दिन की क्या कदर करते हैं, वक्त ना भी हो फिर भी इस पे बात करनी है। आज हमने अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को इतना सस्ता कर दिया, आपकी की हुई मेहनतों पे पानी फेर दिया। एक तरफ हमने बिदात के नाम पे इतना रिलैक्स और रंग रोजन कह लीजिए कि रंग और रौनक वाला दीन बना लिया, खूब पंपी एंड ग्लैमरी दीन है, खूब अच्छी खुशबुओं की महफिलें हैं, और चलिए अल्लाह के नबी को राज़ी कर जाएं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमने दुनिया के नाम पे ख्वाहिशों की चक्की में पिस कर दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। बड़ी मेहनत से ये काफिला तैयार हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये लोग बनते हैं। याद रखिए, जिनके सीनों में ईमान आ जाता है, जो कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, सुन्नत पढ़कर अपने अंदर कुछ करने का जज्बा पाते हैं ना, ये बड़े कीमती लोग होते हैं। फिर इनको ऐसे तंगियों के लश्करों में ले जाया जाए, ये शिकवा भी नहीं करते, ये गिला भी नहीं करते, ये अपने चेहरों से महसूस भी नहीं होने देते कि हम इस वक्त भूखे हैं, हमने खाया नहीं कुछ। उनको तो मकसद प्यारा होता है, और इस मकसद की राह में वो किस तरह से चलते हैं। आज थोड़ा सा इसके बाद ज़रूर अकेले में बैठ कर सोचिएगा, और हर बंदा अपने आप पे देखे। हम तो इतने ज़्यादा एहतमाम में पड़ जाते हैं कभी कभी, इतनी दूर की सोच लेते हैं, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, सबको बता दीजिए, सबके साथ करना है ये काम। हम चंद लोग ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर आने वाली नस्लें किसको बुरा कहें, उनको हक है। तो अल्लाह के नबी और सहाबा को ये सब दिख रहा था, इसके बावजूद मेहनत की, तबुक की राह में लश्कर का गुजर हिजर यानी दियारे समूत से हुआ। समूत वो कौम थी जिसने वादियुल कुरा के अंदर चट्टानें तराश तराश कर मकानात बनाए थे। सहाबे कराम ने वहाँ के कुएं से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ का पानी ना पीना और इससे नमाज के लिए वुजू ना करना, और जो आटा तुम लोगों ने गूंद रखा है इसे जानवरों को खिला दो, खुद ना खाओ। आपने ये भी हुक्म दिया कि लोग इस कुएं से पानी लें जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी लिया करती थी। सही बुखारी और मुस्लिम यानी मेरी रिवायत सहीहीन इब्ने उमर रावी हैं, कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर यानी दियारे समूत से गुजरे तो फरमाए, इन जालिमों की जाय सुकूनत में दाखिल ना होना कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत ना पड़े जो इन पर आई थी। हाँ मगर होते हुए फिर आपने अपना सर ढांका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। यहाँ से क्या पता चलता है कि अजाब रसीदा बस्तियों से जल्दी से गुजर जाना चाहिए। आज भी वादी मैसर से गुजरते हुए हुज्जाज कराम को जल्दी से गुजरने का हुक्म है, कहाँ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ट्रिप्स लेकर जाएं। दूसरी बात आप देखिए कि उस वक़्त इतनी तंगी थी लेकिन आपने वो आटा खाना और खिलाना पसंद नहीं किया। यहाँ से पता चलता है कि मुसलमान हलाल और हराम के मामले में कितना संजीदा होता है, और ना उस कुएं से पानी लेना पसंद किया। तो अल्लाह को ऐसी बस्तियां, ऐसे लोग, ऐसी जगह नहीं पसंद जहां से लोग अल्लाह की नाफरमानियों के साथ गुजरे और अल्लाह के अजाबों का शिकार हुए। रास्ते में लश्कर को पानी की सख्त ज़रूरत पड़ी, हत्ता के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बादल भेज दिया, अल्लाह ताला ने बादल भेज दिया, बारिश हुई, लोगों ने सैर होकर पानी पिया और ज़रूरत का पानी लाद भी लिया। नबी की दुआ से बारिश हो गई, अल्लाह ने गैब से इंतज़ाम किया। लिखिए एक जुमला, जब आप सच्चे दिल से अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं दो तरह की मदद आती है, एक है मिन हई सुला यहतसिब और एक है मिन हई सुयहतसिब। वो जगह जहाँ से आप गुमान करते थे और एक वो जगह होती जहाँ से आप गुमान नहीं करते थे। अमूमन हम इंसानी सहारों को सामने रखते हुए काम शुरू करते हैं, ये इतनी मदद कर देगा, ये कर देगा, ये उतने ये करे। मिसाल है कोई माली प्रोजेक्ट हो और मनी की ज़रूरत हो, हम सोचते हैं फ़लाँ इतने दे देगा, फ़लाँ इतने देगा, फ़लाँ उतने देगा। ये है मिन हैसु यहतसिब। आपने खुद से अजम्पशन की, आपको लगा हाँ इनका इतने अच्छे हालात हैं, ये इतने हैं। ये तो आपकी अजम्पशन होती है, आप एक फिगर करते हैं हाँ इतने तो हम जमा कर लेंगे। लेकिन याद रखिए अल्लाह के रास्ते का हर प्रोजेक्ट मिन है सुला यहतसिब से पूरा होता है। लिख के रख लीजिए दिल की तख्तियों पे, जब जहाँ इस असूल को डालेंगे देखिएगा 100% समझ जाएंगे। हमेशा अल्लाह के दिए से पूरी होती है और अल्लाह वहाँ से मदद लाता है जहाँ से उम्मीद नहीं होती। अल्लाह उनसे काम लेता है जिनको कभी आपने काउंट नहीं किया होता। अल्लाह वहाँ से माल का इख्तमाम और इंतज़ाम करवा देता है जहाँ से कभी आपके तसव्वुर में भी नहीं आया होता। तो बस आप छोटे छोटे काम अपने हिसाब से किया करें और बाकी बड़े बड़े काम अल्लाह ताला से कहा करें, अल्लाह ताला ये है मेरे हाथ में, ये इतना ही कर सकती हूँ, बाकी तू जान तेरे काम, मुझे नहीं पता। आप देखिए एक बच्चा भी माँ बाप से अगर इस तरह की बात करे ना, थोड़े से पैसे लेके आए, बाप को तरस आता है, कहता अच्छा लाओ तुम ये दो बाकी मैं डाल दूंगा। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल भी नहीं है। मत घबराया करें, मत डरा करें, कैसे होगा, मुझे क्या लगे कैसे होगा, जिसका काम वो जाने वो कर देगा। और चल पड़ा करें, बिस्मिल्लाह कहकर निकल पड़ा करें, आप देखेंगे कि वहाँ से मदद आएगी जहाँ तक आपका ईमान होगा। लिख लीजिए, अन्नस्रु माल ईमान, ईमान के साथ मशरूत है मदद, थोड़े ईमान के साथ थोड़ी मदद, ज़्यादा ईमान के साथ ज़्यादा मदद होती है। खैर फिर जब तबूक के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया, कल इंशाल्लाह तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुँच जाओगे, लेकिन चार्ज से पहले नहीं पहुँचोगे, लिहाजा जो शख्स वहाँ पहुँचे इसके पानी को हाथ न लगाए यहाँ तक कि मैं आ जाऊँ। देखिए कैसे तरबियत साथ साथ है, सफ़र में बहुत तरबियत होती है, साथियों की बातें, बात का अंदाज़, चलने का और बहुत कुछ। और अल्लाह के नबी कभी भी इवन जंगों के दौरान भी तालीम और तरबियत का सिलसिला मौकूफ़ नहीं करते थे। खैर ऐसे ही हुआ। हज़रत माज का बयान है कि जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ दो आदमी पहले ही पहुँच चुके थे, चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्या तुम दोनों ने इसके पानी को हाथ लगाया? उन्होंने कहा जी हाँ। आपने इन दोनों से जो कुछ चाहा, जो कुछ अल्लाह ने चाहा, आपने इन दोनों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया, फिर चश्मे से चुल्लू के ज़रिए थोड़ा थोड़ा पानी निकाला, यहाँ तक कि कदरे जमा हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना चेहरा और हाथ धोया और इसे चश्मे में उंडेल दिया। इसके बाद चश्मे से खूब पानी आया। सहाबाए कराम ने सैर होकर पानी पिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम इस मुकाम को बागात से हरा भरा देखोगे। देखिए, मौजज़ात भी साथ साथ हैं। कैसे अल्लाह के नबी के बचे हुए पानी से चश्मे में पानी आ गया, तो आपके चश्मे सूखे, नबी का चश्मा गीला। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ऐसे रहमत बनाकर अपने साथियों में रखता था कि जिसको आज आप कहते हैं कि मिट्टी में हाथ डालें तो सोना बने। और अल्लाह के नबी के ये मौजज़ात आपको बहुत सारे सफ़रों में और ख़ास तौर पर जंगों में दिखेंगे। और इसी तरह आप देखिए कि खुशखबरियाँ, माज को पहले से बता दिया और वाकई फिर बाद में ऐसा हुआ, तो ज़ुबाने नबूवत से जो बात निकल जाती है ना, वो खुशखबरी बन जाती है। रास्ते ही में या तबुक पहुंचकर, दोनों में इख्तलाफ है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कहते हैं अभी रास्ते में थे, कुछ कहते हैं तबुक पहुँच चुके थे। आपने फरमाया, आज रात तुम पर सख्त आंधी चलेगी, लिहाजा कोई ना उठे, और जिसके पास ऊँट हो वो इसकी रस्सी मजबूती से बांध दे। चुनाचे सख्त आंधी चली, एक शख्स खड़ा हो गया तो आंधी ने इसे उड़ाकर ती की दो पहाड़ियों के पास फेंक दिया। ती एक जगह का नाम है। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी और मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ते रहे। जमाए तकदीम भी करते थे और जमाए ताखीर भी। जमाए तकदीम का मतलब यह है कि जोहर और असर दोनों जोहर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएँ, और जमाए ताखीर का मतलब यह है कि जोहर और असर दोनों असर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों इशा के वक्त में पढ़ी जाएँ। क्या देखिए, रास्ते के अंदर नमाजों में भी सहूलत हो गई, चलते जो जा रहे थे, और ये जो आंधी की खबर थी ये आपको अल्लाह की तरफ से इशारे होते थे, और बिल्कुल फिर वैसे ही है। इससे एक बहुत ही अमल की बात लिखिए, हमारे वालिद भी अक्सर यहाँ कह मिसाल दिया करते थे कि जब सहराओं में रेत का तूफान आता है तो वही लोमड़ी और वही जानवर बचता है जो अपना सर ज़मीन में धंसा दे। यानी मुश्किल हालात में अकड़ अकड़ के नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फन्नेहा बन के और अपनी अपने ऊपर लेके देखे कौन है जो मुझे रोकता है, नहीं करिए। आप दबिए, ऐसे वक्त में छुप जाइए। जब फितने होते हैं तो बहुत उभर उभर कर बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं होती। और इसी तरह आप देखिए कि आपने कहा कि ऊँट की रस्सी बांध दे, और बाकी जो एक शख्स खड़ा हुआ तो ये कौन था? रसूल की बात का मुनकर, एतबार नहीं किया, कहा देखता हूँ क्या होता है, तो पहाड़ों में गिर गया। तो कभी भी ऐसा काम ना कीजिए जो सुन्नत से हटा हुआ हो। फिर इसे पता चलता है कि सफ़र में नमाजें जमा की जा सकती हैं, पहले भी वक्त से और बाद में भी, और ये सहूलतें हैं ताकि जिस काम के लिए गए वो काम आसानी से हो जाए। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को 420 सवारों का रिसाला देकर, रिसाला के एक छोटा सा दस्ता, दूमतुल जुंदल के हाकिम उकैदर के पास भेजा और फरमाया, तुम इसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। ये भी देखिए, ज़माने नबूवत से वक्त से पहले बात खबर मिल गई। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब इतने फासले पर रह के कि कला साफ नज़र आ रहा था, तो अचानक एक नील गाय निकली और कले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। उकैदर इसके शिकार को निकला, चांदनी रात थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु और इनके सवारों ने उसे जा लिया और गिरफ़्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया, आपकी खिदमत में हाजिर किया। आपने इसकी जान बख्शी की और 2,000 ऊँट, 800 गुलाम, 400 ज़िरे और 400 नेज़े देने की शर्त पर मुसालहत फरमाई। इसने जिज़िया भी देने का इकरार किया। चुनाचे आपने इससे यखना समेत दूमा, तबूक, ईला और तैमा की शरायत के मुताबिक मामला तय किया। इन हालात को देखकर वो कबाइल जो अब तक रूमियों के आलाकार बने हुए थे, यानी उनके हेल्पर थे, समझ गए कि अब अपने पुराने सरपरस्तों पर एतमाद करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो भी मुसलमानों के हिमायती बन गए। नोट कीजिए, कुछ लोग आपकी कुछ कारकर्दगी देखना चाहते हैं फिर आपके पास आते हैं। उनको डर होता है कि हम नए नए नाम के साथ, नए गिरोह के साथ मिले और हार गए, शिकस्त पा गए तो क्या होगा, इसलिए वो पिछलों को नहीं छोड़ते। लेकिन जब उनके दिलों पे आपकी चीज़ों का रूप आने लगता है और वो अंदर से आपसे इम्प्रेस हो चुके होते हैं, मरगूब हो चुके होते हैं, तो एक एक करके फिर वो आपके साथ ही बनने लगते हैं। इसी तरह इस्लामी हुकूमत की सरहदें वसी होकर बराह रास्त रूमी सरहद से जा मिली और रूमियों के आलाकारों का बड़ी हद तक खात्मा हुआ। ये याद कीजिए, अल्लाह के नबी कोई किसी को किसी से तोड़ते नहीं थे, काटते नहीं थे, लेकिन आप चूँकि हक पे थे, सच पे थे, आपकी ज़िंदगी में जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोग खुद ब खुद उसकी वजह से आपसे इम्प्रेस हो जाते थे। देखिए, काम अच्छा कीजिए, खुद बहुत लोग मिलेंगे, और आप काम ख़राब कीजिए तो आपके अपने लोग भी आपको छोड़ जाएंगे। यही मिजाज है इस्लाम का। आज भी हमेशा अपने लिए ये ख्वाहिश और दुआ किया करें कि अल्लाह दूसरों को अपना बनाने वाले काम करवा हमसे, ये ना के एक करके हमारे अपने भी हमें छोड़ जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना एक कह लीजिए इनविजिबल किस्म का बेनिफिट हुआ। पहले सहाबा कराम अपना इम्तिहान दे के पास हो चुके थे, घर से निकलना ही तो मुहाल था, उसके बाद तो मौजे ही मौजे। आज भी अभी हम क्लास से आए, सुबह के गए होते हैं, इतना हम इंजॉय करते हैं सारा दिन, बाद में मीटिंग थी, फिर कुछ दिल की बातें शुरू हो गई, तो जो साथी थे इतने इंथुसिस्टिक थे, फिर मग़रिब हो गई, नमाज़ पढ़ के हम आए, और आते ही बस ये आप लोगों के साथ क्लास थी। तो मैं उनको ये कह रही थी कि ये मज़ा कितना है इसमें, हक तो बाद में है, हक गालिब हो, जो भी हो, सवाब हो, हमें मज़ा कितना आता है एक दूसरे के साथ, हम कितना इंजॉय करते हैं। तो साहब कराम भी ऐसे इंजॉय करते थे। ये बाप और मैं कहते हैं हाय तबूक, हाय गर्मी, हाय खजूर, उनको नहीं पता लगता होगा, वरना जाते क्यों? क्योंकि इस रास्ते में अल्लाह इतना मगन कर देता है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आप कभी इस काम की लज्जत तो पाके देखें, आपको ये ऑनर इतना बड़ा टाइटल लगता है कि मैं अल्लाह के रस्ते में हूँ, मैं फ़ी सबीलिल्लाह हूँ, मैं अंसारुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह के रस्ते में ज़िम्मेदार हूँ, अल्लाह ने मुझे इस प्रोजेक्ट का बड़ा बना दिया, अल्लाह ने मेरे साथ 10 लोगों की हिदायत जोड़ दी, मैं इनका सबक सुनूंगी, मैं इनका तर्जमा सुनूंगी, बस इसी में खोए रहते हैं। आज भी आप देखिए, जब आप बहुत जोश में होते हैं, खाने की भूख रहती है, शादी हो घर में, सारा दिन घर वाले तो खाते ही कुछ नहीं, शाम को याद आता है आज तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, उसको देख उसको देख, मेहमान आ गए, ये करना वो, ये है वो लज्जत। जब आप इस काम को एक मिशन बना के करते हैं, चोट भी पड़ती है। आप कहते हैं ना बिलाल को कोयलों पे तकलीफ नहीं होती थी, नहीं होती, होती कोयलों पे जिस्म जलता था, दर्द नहीं होता था। इस रास्ते में पाँव में छाले पड़ते हैं, दर्द नहीं होता। इस रास्ते में पेट पे पत्थर बांधने पड़ते हैं, महसूस नहीं होता। और इस रास्ते में तबूक के सफर पे चलना पड़ता है, उतनी एनर्जी मिलती। यकीन कीजिए, जिस दिन ज्यादा काम, जिस दिन ज्यादा प्रोजेक्ट, उस दिन ज्यादा ईमान। आजमाइश आ जाए कोई, अल्लाह ना करे, उसमें और ईमान। आपको जगह छोड़नी पड़ती है उसकी चीज़ों में, और ईमान। तो जो घर बैठ गए, जो सुस्त हो गए, उनके कभी घुटनों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी टखनों में दर्द है, दुआ कीजिए जिंदगी के आखिरी दम तक इंथुसिस्टिक रहें, जज्बों के साथ निकले, और वो लज्जत दूसरा नहीं पा सकता। ये वो ही जानता है जिसको ये लगी होती है। तो बहरहाल यहाँ तक वहाँ कह लीजिए जाने का सफ़र था, वो तो आए ही नहीं। यहाँ ये भी नोट कीजिए, कितना खूबसूरत, खफीफ और लतीफ़ इशारा है आज के दौर के लोगों के लिए, आज के दौर के हुक्मरानों के लिए। आप डरेंगे, दूसरे और डराएंगे, और आप डराएंगे तो अगले दुबक जाएंगे। जो अल्लाह से डरता है, दूसरे सब उससे डरते हैं। अब देखिए ज़रा वापसी के सफ़र में क्या होता है। मदीना को वापसी, इस्लामी लश्कर तबूक से मुजफ्फर व मंसूर, यानी मुजफ्फर जफ़र से, जफ़र किसको कहते हैं, कामयाबी को, और मंसूर नसर से, नसर यंसुरु से, क्या पता चला कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फतुहात की सूरत में वापस आया, कोई टक्कर ना हुई। इसको तो हाईलाइट कीजिएगा, हर अंदेशा जो आपको आज है ना, ज़रूरी नहीं पूरा हो। बास दफ़ा बहुत बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, हमारे तहफ़ुज़ात होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होता। आज भी आप देखिए ज़िंदगी में, कभी कोई काम पीछे का, 10 साल 5 साल पीछे का सोचिए, कितने खदशे थे, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब हो जाता है काम, सब ठीक हो जाता है। पहले इफ्स एंड बट्स, रिश्ता करना है, हाय ना करें, हाय वो लड़ाके हैं, हाय बेटी को ऐसे ना हो, हाय वो ऐसे वो ऐसे, जब हो जाता है, आज माशाल्लाह आपकी बेटी खुशबाश है उधर, आपको उनकी बहू, अपनी उनकी बेटी को बहू बना के लाना था, 100 बातें सोच रहे, ये ना वो ना, उसकी खाला उसकी पुप्पी, एक दफ़ा अल्लाह ने रिश्ता करा दिया, बिस्मिल्लाह, कुछ भी तो नहीं होता। तो इस रास्ते में बहुत डराते हैं लोग आपको, एक नसीहत लिख लीजिए, कभी डरिएगा नहीं, बस अल्लाह से डरिए, अल्लाह बाकी काम आपके खुद ही करा देगा। और इस रास्ते में ऐसे ऐसे बड़े इम्तिहान आते हैं कि जुलजिलु जिलजालन शदीदा, हिला मारे गए, कांप गए, और ऐसे काम के अपने छोड़ जाते हैं साथ, दूसरों को अब क्या कहें, दूसरे मिलते जाते हैं अपने छोड़ते जाते हैं। डोंट वरी, एक बात का अपने आप को यकीन दिलाए कि सही रास्ते पे हो, नीयत ठीक है, तरीका नबी का, यानी देखिए दो चीज़ें अमल की कबूलियत की, कान लिल्लाही, अल्लाह के लिए हो, लिल्लाहियत तो, और उसवे हसना के मुताबिक हो। अमल साले की दो ही शरायत हैं, करें अल्लाह के लिए और तरीका नबी का रखें, बस। फिर आप इधर उधर मत देखें, नो लेफ्ट नो राइट, स्ट्रेट एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, कोई टक्कर ही ना हुई। अल्लाह जंग के मामले में मोमिनीन के लिए काफ़ी हुआ, दुआ कीजिए अल्लाह आज मुसलमानों को काफ़ी हो जा, लेकिन शर्त वही कि ईमान वाला मोमिन, मुस्लिम नहीं मोमिन, और ईमान भी वो जो पहाड़ों को रास्ते से हटा दे। अलबत्त रास्ते में एक जगह, एक घाटी के पास 12 मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। इस वक्त आप इस घाटी से गुजर रहे थे, आपके साथ सिर्फ हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो थे जो ऊँटनी की नुकेल थामे हुए थे, और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जुमान थे जो ऊँटनी हाँक रहे थे, यानी वही जो आपके हेल्पर्स थे रास्ते में, वही आपके साथ थे, बाकी सब लश्कर इधर से उधर था थोड़ा सा, यानी इधर उधर थे। बाकी सहाबा कराम दूर दराज वादी के नशेब से गुजर रहे थे, यानी कभी कभी सफ़र में ऐसा होता है ना कि साथ चलने वाले भी थोड़ा सा इधर से उधर हो जाते हैं, तो वही वक्त था। ये अल्लाह के नबी के साथ कह लीजिए कि कुछ ख़ास लोग थे जो आपके बहुत क्लोज सर्कट, आपके टेक केयर थे, आपका ख्याल रखने वाले थे, खालिद बिन वली, हज़ैफ़ा बिन जमान और अम्मार बिन जासिर थे, बाकी सहाबा दूर थे। इसलिए मुनाफिकीन ने इस मौके को अपने नापाक मकसद के लिए गनीमत समझा और आपकी तरफ कदम बढ़ाया। इधर आप और आपके दोनों साथी हस्बे मामूल रास्ता तय कर रहे थे कि पीछे से इन मुनाफिकीन के कदमों की चापें सुनाई दीं। ये सब चेहरों पर ढाटा बांधे हुए थे और अब आप पर तकरीबन चढ़ ही आए थे कि आपने हज़रत हुज़ैफ़ा को इनकी जानिब भेजा। उन्होंने इनकी सवारियों के चेहरों पर अपनी एक ढाल से ज़र्ब लगाना चाही, जिससे अल्लाह ने इन्हें मरूब कर दिया और वो तेज़ी से भाग कर लोगों में जा मिले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम बताए और इनके इरादे से बाखबर किया। इसलिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदान कहते हैं, साहिबे सिर्रे रसूल, सीक्रेटरी, जैसे आप आज सेक्रेटरी कहते हैं ना, तो सीक्रेट्स रखने वाला शख्स। इस वाक्य से अल्लाह ताला का ये इरशाद कुरान पाक में है, वहम्मू बिमा लम यनालू, और उन्होंने इरादा किया उस काम का जिसे वो कर ना पाए। ज़रा सा रुको, बहुत ही कड़वी बात है इसके अंदर, शायद जल्दी में आपने ना महसूस की हो। उस दौर के मुनाफिकीन भी तबूक के सफ़र तक होकर आए थे, नोट करिएगा, यानी उस दौर का मुनाफिक भी सिर्फ इस खौफ की वजह से कि मेरा पोल ना खुल जाए, इतने दूर के रास्ते तक साथ गया। लेकिन दिल का खोट देखिए, इतना बड़ा मोजज़ा देखकर, इतना बड़ा मार्का, इतना दुश्मनों पे रोब डालकर, अल्लाह के नबी के ज़रिए सहाबा का लश्कर वापस आ रहा है, इनके दिल फिर ना बदले, नबी को कत्ल करना चाहते हैं। और दूसरी बात इससे भी तकलीफ दे है कि अल्लाह के नबी के दौर आपको देखने वालों में भी कुछ मुनाफिक थे। आज की तो बात ना करूं तो बेहतर है, बस अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब। अल्लाह निफाक को निकाल दे। देखिए कोई नहीं पता नमाज पढ़ने वाला भी मुनाफिक है कि नहीं, कोई नहीं पता दीन के काम करने वाला भी मुनाफिक है कि नहीं, और ये कौन पूछे, मैं अपने आप से पूछूं। मैं दावा करती हूँ ना कि मैं दीन के काम करती हूँ, मैं दूसरों को बुलाती हूँ, तो मुझे अपने दिल को देखना है। कभी कभी अल्लाह फासिकों से भी काम ले लेता है, और अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना, हमारे दिल साफ कर दे। कैसे दिल चाहोगा उस प्यारे से चेहरे के ऊपर वार करने को, और उस खूबसूरत शख्सियत को कि जिससे गैर भी मोहब्बत करें और मरूब हों। ये निफाक कैसी बुरी चीज़ है, ये कैसा बुरा रोग है, कैसे लोगों को अपने प्यारे लीडर से बदगुमान कर देता है। असल में शैतान था। और आप देखिए कि मौका देखा, तो गोया कि ऐसे लोग साथ इसलिए जाते हैं कि जहाँ मौका पड़ा हम बदनज़मी डाल देंगे, कुछ फितने उठा देंगे और फिर कुछ मुखबरियाँ भी कर लेंगे। और आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने हमला किया तो आपको सबके नाम पता थे जो अल्लाह ने वही से बताए, फिर भी आपने सिर्फ एक को बताया, बाकियों को नहीं बताया। तो क्या पता चला, आज तसव्वुर भी ना कीजिए किसी के लिए कि वो मुनाफिक है, कभी किसी के लिए ऐसा जुमला ना सोचिए। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को मुनाफिक कह सकते हैं जो उसका फिक्र है, तो वो है जो आईने में दिखता है। किसी के काम करने वाले के बारे में किसी दूसरे के लिए कभी ना सोचिए कि वो मुनाफिक है। आज हमें अपने सिवा सारे मुनाफिक लगते हैं, साहबा को तो अपना ही आप बुरा लगता था, दूसरे तो अच्छे ही लगते थे। तो बहरहाल खात्मे सफ़र पर जब दूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के नक़ूश दिखाई पड़े तो आपने फरमाया, ये रहा ताबा, ताबा तैब से ताबा तीब, खूबसूरत खुशबू और प्यारी चीज़, ताब लकुम, सूरत निसा के बिल्कुल शुरू में, वो औरतें जो तुम्हें अच्छे लगें, तिब ना लकुम, मेहर की बात कुरान में आती है। और फरमा, ये रहा उहद, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं। इधर मदीना में आपकी आमद की खबर पहुंची तो औरतें, बच्चे और बच्चियां बाहर निकल पड़ी और ज़बरदस्त एजाज के साथ लश्कर का इस्तकबाल करते हुए ये नगमा गुनगुनाया, तलव बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदा, मिन सनीयतिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। हम पर सनीयतुल विदा से 14वीं का चांद तुलू हुआ, जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे हम पर शुक्र वाजिब है। सोचिएगा ज़रा सा, इस पे गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी का ऐसे मौके पर ये खूबसूरत जुमला, ये रहा ताबा, ये रहा औहद, ये घर वापस पहुंचने की खुशी होती है। सफ़र सफ़र है, घर घर है। और फिर इतनी कामयाबी बड़ी दी, जाने वक्त तो लोग सोच रहे थे एक भी वापस नहीं आएगा और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मज़े की बात देखिए, बहुत बड़ी बात है, कुछ भी तो नहीं हुआ। लोग यही कहते हैं ना, हाय मर जाएंगे, आए टक्कर ली तो दुश्मन तो बहुत बड़ा है, चलो थोड़ी सी अगर मशक्क़त हुई तो कोई बात नहीं, वज़न घट गया, एक्सरसाइज हो गई, पसीना चला गया। तो दीन के रास्ते में जो फियर्स एंड डाउट्स होते हैं ना, अक्सर गलत होते हैं, वो शैतान डालता है। हम अपने आप को बहुत मुख्तार समझ होते हैं, देखा कितनी अक्लमंद हूँ, कितनी क्लेवर हूँ, कितनी जीरक हूँ, मुझे वक्त से पहले वो सूझ गया जो दूसरों को नहीं सूझा। नहीं, एक खास हद तक ठीक है, इससे ज़्यादा गलत है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद तलव बद्रु अलैना, नबी को 14वीं का चांद कहा, बद्रे मुनीर, हाँ सनीयतिल वदा जगह का नाम है। और क्या पता चला कि लीडर के आने का सुनकर खुशी से दिल खिल गया और कहते हैं कि हम पर अल्लाह का शुक्र है, मा दा लिल्लाहि दाइन, जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे। इतना प्यारा वेलकम कौन किसी को कह सकता है जो उस वक्त अल्लाह के नबी के लिए बोला गया। बाद जगह यही चीज़ पीछे हम देख चुके हैं कि हिजरत के मौके पे थी, हमारे यहाँ यही मारूफ है, लेकिन दोनों अहादीस हैं, एक में बल्कि ज़ोफ़ है, एक सही दर्जे की है। हमें तो इन अशार को देख कर बस ये सोचना है कि मदीना वालों के दिल में अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक के लिए रजब में रवाना हुए थे और वापस आए तो रमज़ान का महीना था। इस सफ़र में पूरे 50 रोज़ सरफ हुए, 20 दिन तबुक में और 30 दिन आमदोरफ्त में। यह आपकी हयात मुबारका का आखिरी गजवा था जिसमें आपने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई। नोट कीजिएगा, रजब में गए तो वापस रमज़ान में आए, 50 रोज़ कितने होते हैं इमेजिन कीजिए, 10 दिन कम 2 महीने, जिसमें से 20 दिन तबूक में पड़ाव डाला और बाकी 1 महीने का सफ़र। आज सोच भी सकता है कोई? और अल्लाह करे कि हमें अपने ईमान को परखने की और अपने आप को देखने की तौफीक हो जाए, कैसे अल्लाह ताला ने इस सारे सफ़र को खूबसूरत बनाया था। आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं, अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसको हम इंशाल्लाह अलग से इंजॉय करना चाहते हैं, वरना भी हमारे पास तकरीबन 2 मिनट तो हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल का सेशन जो हम सब के लिए एक आईना होगा, क्योंकि हम दीन के नाम पर बहुत सारी माजरतें करते हैं, बहुत सारे उज़र करते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो कुछ खा पी कर बैठेंगे ताकि ये सारी बातें सुन सकें, बर्दाश्त कर सकें। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आप देखिए कि इन सारी चीज़ों को पढ़ते सुनते वक्त ईमान कितना बढ़ता है, तो आप सोचिए कि जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनका ईमान कितना नहीं बढ़ा होगा, और कैसे अल्लाह ताला ने फिर उनके दिलों की बहार इसको बनाया होगा। और जितना रास्ते में निकलेंगे अल्लाह के उतना ईमान बढ़ेगा। लिख लीजिए, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल करेंगे उतना अल्लाह की रहमत होगी, और जितना आपकी हिम्मत छोटी होगी, जितना आप सोचेंगे हाय कैसे, वो कैसे, ये कैसे, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा। तो तौफीक मांगा करें कि मेरे मालिक तौफीक दे दे, तेरे रास्ते में अगर मैं निकलूं तो तू मुझे थाम के रखना, मुझे कभी ज़ाया ना करना, और मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे रखना। जी आप लोग माइक लेना चाहिए तो होल्ड कीजिए और शेयरिंग कर सकते हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है, मेरा तो बहुत ईमान बढ़ा और बहुत अपने गिरेबान में झांकने का मौका भी मिला। अल्लाह अकबर कबीर, आप देखिए कि तबूक के सफर में क्या क्या देखा सहाबा ने, कितनी मुश्किलात और शुरू ही में। और ये देखिए कि जब सफर कर रहे थे उस टाइम पे देखे हम कि असबाब की कमी थी और दरख्तों के पत्ते तक खाना पड़े पड़े और सहाबा को, और 18 18 आदमियों के लिए एक ऊँट हिस्से में आया कि बारी बारी उस पर सवार होते थे। आप सोचिए जरा, अल्लाह अकबर कबीरा। और सख्त गर्मी, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है और जा रहे हैं, और हम सोचें कि आज हमारे सफर कैसे होते हैं। इवन हम दीन के लिए निकलते हैं तो कितना कुछ हमारे साथ होता है ना, तो अल्लाह अकबर कबीरा। और एक वक्त ऐसा आया कि ऊंटों को किल्लत के बावजूद ऊंटों ही को ज़िबा करना पड़ा ताकि उनके मैदे और आंतों के अंदर जमा शुदा पानी और तरी पी जा सके। अब सोचिए सिस्टर्स, मुझे तो बहुत, मैं ये इतना ईमान जो बड़ा है ना, ये सब अल्लाह अकबर कबीरा, कि ये देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम जरा सी परेशानी, जरा सी हो जाए कुछ बात, जरा सी अपने नफ्स पे कोई बात आ जाए, किसी ने कोई बात कर दी, कुछ कह दिया, और बस हम तो कहते हैं कि बस हम तो अब बड़े हैं, अब हमसे तो नहीं होता दीन का काम ना। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये देखिए कि, और ये जज़ाकअल्लाह खैर उस्ताद जी, जैसे आपने ये बात की ना कि बड़े बड़े चैलेंजेस को कबूल करेंगे उतना ही अल्लाह की रहमत आएगी, और अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जमा के रखे। और अल्लाह सुबहाना ताला जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा इम्तिहान तो लेते ही नहीं ना इंसान का, कभी कभी इम्तिहान शुरू में होता है जैसे गज़वा तबूक में सहाबा का हुआ, और लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दी, बगैर एक बंदा भी कत्ल हुए, बगैर हथियार उठाई जो है वो सारा काम अल्लाह ताला ने करवा लिया। तो और फिर हमने ये भी सीखा कि मुसलमान को डरना नहीं है ना, दुश्मन से डरना नहीं है, ठीक है। और जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो बाकी काम कौन करवाता है हमसे, खुद बहुत अल्लाह ताला करवा लेते हैं। तो अल्लाह ताला से इंशाल्लाह तौफीक मांगनी इन तमाम बातों की, इन तमाम चीज़ों की। और अपनी नीयत को हम लोगों ने चेक करना है जब भी अल्लाह के रास्ते का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है सिस्टर्स, के हम किसके लिए कर रहे हैं और क्या हमारा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यानी अपने हमने अमल साले की दो शरात देखी है ना, इंशाल्लाह इसको हमने जहन में रखना है। और अल्लाह सुबहाना ताला बस हमें हर किस्म के निफाक से बरी कर दें, और अल्लाह सुबहाना ताला हमें कभी दूसरों पे उंगली उठाने का मौका ना दें, बस अपने आप को देखते रहें, हम खुद को देखें। और एक साजी जुमला कहते होते हैं, साजी आप कहते हैं कि जो मुनाफिक होता है ना वो खुद को निफाक से बहुत बरी समझता है। और देखें कि सहाबा कराम जो थे और कितनी सहाबियात और महातुल मोमिनीन को खुद पे निफाक के शुबे होते थे ना, तो हर वक्त खुद को आजिज रखना है इस रस्ते में। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह कल हम शुरू के जो 15 मिनट होंगे उसमें हम भी कैप करेंगे। आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का या कोई बात, तो नहीं तो फिर उस आजी दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक। ठीक है इंशाल्लाह।
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك
चलिए
اشهد
ठीक है, हम
ان
लोग
لا
फिर
اله
दुआ मांग लेते हैं।
الا انت
चलो ربنا
استغفرك
تقبل منا
واتوب اليك.
انك انت السميع العليم وتب
ربنا
علينا.
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.